अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। अभी जब मैं ये गीत सुन रही थी, तीन बिंदु मत बिसरो, तो मुझे एक तो वो बात याद आ रही थी जब एम चेन्ना रेड्डी यहाँ थे, तो एक बार बाबा उनसे मुलाकात कर रहे थे 91-92 की एक मुरली में बाबा की उनसे मुलाकात दिखाई है। तो बाबा उनको कह रही हैं, बच्चे सुबह उठते ही तीन बिंदु याद किया करो, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। तो मैंने मन में सोचा कि जब हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो ज्ञान की इधर उधर की बातें सुनाने की कोशिश करते हैं, इतनी गहरी बातें हम थोड़े सुनाते हैं। लेकिन बाबा ने तो ज्ञान की एकदम गहरी बात, बिंदु लगाने की बात इस आत्मा को कितनी सरलता से सुना दी। तो वो पॉइंट पढ़ के प्रेरणा आई कि किसी को भी सीधा ज्ञान अब सुनाया जा सकता है। सुबह भी बाबा ने बोला ना कि पहले रचयिता को जानेंगे तो रचना को जानेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर की बातें सुनाते हैं, फिर कोई ज्ञान में नहीं चलता तो बाबा को समाचार भेजते हैं, 1000 में से एक आ रहा है, तो बाबा समझ जाता है जो परिचय देना चाहिए था वो नहीं दिया। दूसरा, इस गीत को सुन के मुझे याद आई एक और मुरली जिसमें बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा दी। बाबा ने कहा तीन बिंदु लगाना ही संपूर्ण पवित्रता है। अब तीन बिंदु आपने लगा दिए तो सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मैं बिंदु तो शरीर भान खत्म, बाबा बिंदु तो सारा संसार खत्म, बीज को पकड़ लिया और जो बीत गया वो बिंदु, तो पास्ट और फ्यूचर की बातें खत्म। तो ये है संपूर्ण पवित्रता। हमारे गीत भी गीता हैं, जगदीश भाई ऐसे कहा करते थे, सच्ची गीता हमारी गीत, क्योंकि बाबा की मुरलियों के आधार पे ये गीत बने हैं। तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहली मुरली चली थी 21 जनवरी 1969 की। उसमें बाबा ने एक लाइन बोली है कि यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। अब यज्ञ की स्थापना 1936-37 में हुई। शिव बाबा अचानक ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे, कोई अनाउंसमेंट हुई थी क्या? यहाँ जब प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, तो जोर जोर से अनाउंसमेंट होती है, पोस्टर लगते हैं, बड़े बड़े गेट बनते हैं, भाई अमुक आ रहा है, अमुक आ रहा है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, कोई पोस्टर, कोई अनाउंसमेंट, कुछ हुआ क्या? इसलिए बाबा कहते हैं मेरे आने की डेट ही किसी को पता ही नहीं पड़ती, शिवरात्रि तो भक्तों ने अपने हिसाब से बना रखी है। तो अवतरण अनायास हुआ, लेकिन उसके लिए भूमिका पहले से बनी हुई थी। क्या भूमिका बनी हुई थी? आपने बाबा की 18 दिसंबर 1932 की एक डायरी पढ़ी होगी, वो डायरी YouTube पे भी रखी हुई है और WhatsApp पे भी उसके पन्ने मैंने देखे हैं, जनवरी महीने में वो सेंड किए जाते हैं। तो जो खास 18 दिसंबर की बाबा की डायरी का एक पन्ना है, उसमें बाबा पहले अपने आप से बात कर रही हैं। तो उसमें बाबा अपने आप को कह रही हैं कि तुम असत्य को ग्रहण मत करो, असत्य को छुओ मत, गुरु जी को देखो, ये सत्य हैं, सती बोलते हैं, सत्य स्वरूप में टिक करके रहते हैं, असत्य संसार से किनारा कर रखा है, इनको दुख छू भी नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि ये दुख की दुनिया से परी। फिर बाबा अपने आप से कहते हैं कि तुम देखो अपने आप को, दुनिया के व्यवहार के कितने फुरने और कितनी चिंताएं, तुम इनको छोड़ क्यों नहीं देते? और फिर कहते हैं कि गुरु जी के आगे सारी दुनिया झुकती है, उनको लोग ईश्वर मानते हैं, क्यों? वो लोगों को कोई धन देते हैं क्या, हीरे मोती देते हैं क्या, क्या देते हैं? एक सच्चा ज्ञानी तो देते हैं, और सच्चे ज्ञान में यही बताते हैं कि तुम्हारा शरीर नश्वर है, संबंध नश्वर है, संपत्ति नश्वर है, इसलिए इस नश्वर से ध्यान हटा के सत्य से ध्यान लगाओ। तो ऐसे करके बाबा अपने आप से बातें कर रहे हैं। फिर 31 दिसंबर 1932 की डायरी का भी एक पन्ना है जिसमें बाबा कहते हैं कि जो द्वैत है वो असत्य है और जो अद्वैत है वो सत्य है। द्वैत माना ये संसार और इसकी अनेक बातें, इसको बाबा ने द्वैत बोला है। अद्वैत माना मैं और परमात्मा, तो तुम द्वैत से हटके अद्वैत में आ जाओ, असत्य को छोड़ करके सत्य में आ जाओ, ऐसे बाबा अपने आप से बातें कर रहे हैं। तो बाबा ने अपनी भूमिका तैयार की। इस प्रकार से दुनिया से डिटैच होने के लिए अपना मन तैयार किया। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, 6-8 पेज है। बार बार अपने मन को बाबा कह रही हैं कि तुम भटकते क्यों हो, तुम मुझे धोखा क्यों देते हो, आज इंद्रियों का मैंने दरबार लगाया, किस मैं पूछ रहा हूँ मन मंत्री से, आज तक तुम मुझे नीचे गिराते आए, अब मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसूंगा, अब मैं तुम्हारे चंगुल से बाहर निकल गया हूँ, ऐसी ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं। तो यज्ञ की स्थापना अचानक हुई, लेकिन बाबा ने अपनी भूमिका पहले से बनाई, और जैसे ही शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया तो बाबा उनके आदेशों को पालने के लिए, मानने के लिए रेडी थे। उसके बाद कुछ दिन तो कार्य ठीक चला, बाबा के घर में सत्संग चला, हमारी दादियां सत्संग में आई, बहुत सारे भाई बहन इकट्ठे हो गए। शुरू शुरू में तो लोगों को सत्कार का आकर्षण था, लेकिन बाद में आए बंधन। जब पवित्रता की बात आई और बंधन इतने आए कि बाबा का हैदराबाद में रहना मुश्किल हो गया। फिर एक अचानक की घटना घटी, अचानक बाबा हॉस्टल के बच्चों को, अपने परिवार को और जो थोड़े बहुत समर्पित बच्चे थे उनको लेकर के कराची चले गए, रातों रात अचानक गए। इसकी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि ब्रह्मा बाबा हैदराबाद को छोड़ रहे हैं और कराची में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो बच्चे हैदराबाद में थे और बांधेले थे, अब वो ढूंढते रहे बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। हमारी एक सीतू दादी थी, हापुड़ में उन्होंने लंबे समय तक सेवा की, उनका नाम सीता था, बाबा उसको सीतू बच्ची कहते थे। यज्ञ की गैया संभालती थी वो, तो सीतू दादी उस समय छोटी थी, बांधेली थी, घर के लोग सुबह जब सोए रहते थे अमृत वेले तो चुपचाप उठ के वो मंडली में क्लास करके आती थी और फिर आके सो जाती थी, घर वालों को पता ही नहीं पड़ता था कब गई और कब आई। अब उस दिन गई तो वो मंडली है ही नहीं, पता पड़ा वो मंडली तो कराची चली गई, तो अब क्या करे। तो इसकी माँ तो वो मंडली के अगेंस्ट थी, भाई और दादा उसकी सहानुभूति थी। तो भाई ने कहा कि देखो तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है, 2 बजे हैं, 4 बजे तक अगर तुम चली गई कराची तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। और भाई ने क्या किया, कपड़े और चप्पल और पैसे जिस कमरे में थे उसको ताला लगा के चाबी सिराने रख के सो गया। अब ये बेचारी तड़फ रही है, न चप्पल है, न कपड़ा है, न पैसा है, कराची जाऊं तो कैसे जाऊं। पर कहते हैं जिसको लगन होती है ना उसको रास्ता निकल आता है। तो ये अपने दादाजी के पास गई कि देखो मुझे कराची भेजने में मदद करो, और अगर आप मेरी शादी कर दोगे फिर मैं रोती हुई वापस आऊंगी तो आपके पास ही आऊंगी, इससे अच्छा मुझे ऐसी जगह भेज दो जहां सदा सुखी सुख है। तो दादा ने पूछा ऐसी जगह कौन सी है, बोला ऐसी है ओम मंडली और वो कराची चली गई है, मुझे वहां जाना है। तो दादा ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, बोला फटाफट मुझे एक चिट्ठी लिख दो कि मैं अपनी पोत्री को ओम राधे के पास ज्ञान सुनने की छुट्टी देता हूँ। तो दादाजी ने चिट्ठी लिख दी, एक काम तो पूरा हो गया। अब बचा पैसा, तो जमुना दादी थी एक मम्मा की ब्राह्मणी, उसके घर गई, उससे चप्पल ली, कपड़ा लिया, 125 लिया, और फिर ईशु दादी के पिताजी को कहा कि मुझे टिकट बनवा के दो, 125 में टिकट बनती थी हैदराबाद से कराची की, वो टिकट बनवा के दी। और स्टेशन पे जाके और ट्रेन में बैठ गई, पर ये पूछना भूल गई कि कराची में कहाँ जाना। स्टेशन पे उतरी और आधा घंटा घूमती रही, फिर किसी किसी से पूछती है कि दो दिन पहले यहाँ सफेद कपड़े वाले आए थे, वो कहाँ गए? स्टेशन वाले कहते हैं हाँ आए तो थे बहुत सारे लोग, पर कहाँ गए ये हमको नहीं पता। अब देखो, बाबा उस समय भोजन कर रहे थे और बाबा के पास एक बच्चा भी भोजन कर रहा था, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम भोजन की थाली छोड़ के स्टेशन जाओ, मेरी एक बच्ची मुझे ढूंढ रही है। तो वो दौड़ा दौड़ा स्टेशन आया और उसने सीतू दादी को ढूंढ लिया और बताया कि मुझे बाबा ने भेजा है कि मेरी एक बच्ची मुझे याद कर रही। फिर वो सीतू दादी को लेके गया तो बाबा ने पूछा बच्ची पत्र लाई? तो सीतू दादी कहती है बाप के घर में आने के लिए पत्र लेके आना होता है क्या बाबा? तो बाबा ने मम्मा को कहा इसको नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ, शाम को बात करेंगी। शाम को जब बाबा से मिली तो वो पत्र दिया तो बाबा ने कहा बच्ची अब तुम निर्विघ्न हो गई, क्योंकि पत्र आ गया वरना दादाजी की स्वीकृति है तो अब कोई कुछ कह नहीं सकता। तो देखिए अचानक की घटना, लेकिन अचानक के पेपर में बच्चे कैसे पास हो गए, कैसे छलांग लगा दी, आगे का सोचा ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि जिनकी लगन सच्ची होती है ना, तो भगवान नंगे पांव भी दौड़ करके आता है और उन बच्चों की रक्षा करता है। तो शुरू शुरू में तो ऐसी घटनाएं बहुत घटी। अब 14 साल ये लोग कराची में रहे तपस्या की, और उसके बाद फिर एक और अचानक का पेपर आया। वो क्या था? शिव बाबा ने आदेश दिया कि आपको भारत जाना है। पहले इन्होंने अपने घर छोड़े, उसके बाद इनको अब अपना देश भी छोड़ना है, और देश छोड़ के एक ऐसे स्थान पे जाना है जिसके बारे में ये कुछ भी नहीं जानते। कईयों ने तो दिल्ली का नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि दादियां स्कूल में नहीं गई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी, और माउंट आबू का नाम तो किसी ने भी नहीं सुना था। लेकिन शिव बाबा का कहना और बच्चे झट तैयार हो गए। एक पानी का जहाज हायर किया, सब उसमें बैठ गए, सामान की गठड़ियां उसमें रखी। आप सबने फोटो देखे, यहां भी फोटो होंगे, कैसे बंदरगाह पे गठड़ी बांध करके बच्चे बैठे हुए, एक सेकंड में तैयार हो गए। किसी ने नहीं कहा कि बाबा ये तो हमारा देश है, हम इसको छोड़ के कैसे जाएंगे, और माउंट आबू में आ गए। माउंट आबू में आए तो कराची से ओपोजिट वातावरण, कराची समुद्र के किनारे, माउंट आबू पहाड़ पे। कराची में ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, और माउंट आबू में अति सर्दी। कराची में मेवा और माउंट आबू में तो बाजरा, क्योंकि उस समय भारत में गेहूं बहुत कम होता था, नहरें नहीं थी, सिंचाई नहीं थी, बाजरा होता था, तो बाजरे का ढोडा मिला यहाँ पे। तो चलो बाबा के प्यार में वो भी बच्चों ने सहन किया और सोचा कि सदा बाबा के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ फिर एक और पेपर आ गया। क्या पेपर आया? वो भी अचानक का पेपर था। बाबा ने हाथ खड़े करवाए, सेवा में कौन जाएगा। असल में 26 जनवरी पे दिल्ली का निमंत्रण आया था कार्यक्रम में शामिल होने का, तो बाबा ने बच्चों के बीच में हाथ खड़े करवाए थे कि दिल्ली कौन जाएगा। कोई भी तैयार नहीं हुआ था, बाबा को छोड़ के कोई जाने को तैयार नहीं था। आखिर में बाबा ने गंगे दादी और मनोहर दादी को तैयार किया। तो गंगे दादी कहती है बाबा आपकी खातिर हमने सब कुछ छोड़ा, अब आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, आप हमें अपने से दूर क्यों कर रहे हो। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम गंगे हो, और गंगे अगर पहाड़ पे ही रहेगी तो मैदान वाले तो प्यासे ही मर जाएंगे, उनको पानी नहीं पिलाओगी, इसलिए तुमको केवल पहाड़ पे नहीं रहना, मैदान में भी बहना है। और ऐसे कह के बाबा ने दोनों दादियों को तैयार कर दिया। और पैसे कितने मिलते थे, ना तो ये हिंदी जानी, ना ये दिल्ली को जानी, ना इनका कोई ठिकाना, ना इनको कोई जगह का पता। दिल्ली स्टेशन पे उतर गई, तांगे वाले से पूछती है भाई बाहर से कोई आए तो वो आके कहाँ रहता है। तांगे वाले ने कहा भाई यहाँ धर्मशाला ही होती हैं, और यहाँ एक गौरी शंकर मंदिर है, उसमें कुछ कमरे हैं, पुजारी दे देता है। तो बोला ठीक है हमको वहीं ले चलो। तांगा लेके मंदिर में पहुंच गई पुजारी को पूछा, पुजारी ने कमरा दे दिया। अब खाएं क्या? तो पुजारी ने कहा कि 12 बजे भगवान को भोग लगता है, उसके बाद जो भोग लगता है वही आप खा लेना। इन्होंने कहा हमारा तो नियम है, हम ऐसे बना हुआ भोजन नहीं खाते। पुजारी ने कहा ठीक है, आपको सूखा राशन दे देंगे और एक चूल्हा दे देंगे लकड़ी वाला, उसमें बनाओ खाओ। ठीक है, सुबह सुबह क्या खाएं? चाय नहीं, दूध नहीं, कोई स्टोव नहीं। तो बाबा का टेलीग्राम आ गया 2 दिन के बाद, बच्ची तुमको लाल किले पे झंडा लहराना है। तो सुबह सुबह निकल पड़ी दोनों दादियां, लाल किले पे जाना है, रास्ता पता नहीं है, जो मिलता है उसी से पूछते हैं लाल किला किधर है। अब कोई गाड़ी वाला मिल जाता है तो थोड़ी देर लिफ्ट दे देता है, कहता देखो यहां तक तो मैंने उतार दिया, अब आगे आप लोग पैदल चले जाना इधर से। अब खाली पेट पैदल चल रही है तो खाली पेट बहुत चलो तो पेट में दर्द होता है। जब पेट में दर्द होता था तो थोड़ा सड़क के किनारे बैठ जाती थी पेट पकड़ के, फिर थोड़ी हिम्मत आती थी तो फिर उठ के चल पड़ती थी। अब चलते चलते जब बहुत भूख लगती थी तो 2 पैसे के चने खरीदती थी और चलते चलते उनको फांक लेती थी। अब चने खा के प्यास बहुत लगती है, पानी कहाँ पिए? आज की तरह से ना तो रेडियो पे बोतल मिलती थी और ना ही उनके पास खुद के पास कोई पानी का प्रबंध था, तो गन्ने की रेड़ी से 2 पैसे की गनेरी खरीदती थी और उसको चूस करके थोड़ा गला तर करती थी और उसके बाद कहीं जाकर के वहां पहुंचती थी, पूछती थी हमको राष्ट्रपति जी से मिलना है, प्रधानमंत्री जी से मिलना है, तो वो कहते थे अरे कोई अपॉइंटमेंट ले रखी है क्या? बिना अपॉइंटमेंट के ऐसे मिल लोगे? ओम शांति। इसकी कोई प्री वार्निंग नहीं थी कि ऐसा ऐसा होगा, बताया नहीं गया था, लेकिन जो भी कुछ हुआ उसको स्वीकार किया। अब इतनी दूर गए, लाल उधर पहुंचे तो उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट थोड़े ली थी, उसके बाद अपॉइंटमेंट दी, उसके अनुसार दोबारा आना। अब चल के गए उतनी मेहनत वापस आने की, और वापस आने के बाद वहां कोई छोटी कन्याएं थोड़ी बैठी थी कि भोजन तैयार रखेंगी, फिर आकर के चूल्हा जलाओ, फिर उसमें जो भी सूखा राशन मिला है जैसा भी है वो भोजन पकाओ, और उसके बाद जो मंदिर में भक्त आते हैं उनको ज्ञान सुनाओ। लेकिन फिर भी इनको था कि चलो एक ठिकाना मिला और बाबा का ज्ञान सुन के लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन वहां भी फिर पेपर आ गया, और पेपर ये आया कि एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में आया और वहां झाड़ का चित्र लगा देखा, और झाड़ के चित्र में क्राइस्ट को बैठे देखा, तो बोला ये सफेद कपड़ों वाली नंस और ये धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आई है। पुजारी को सिखा दिया इनको तुमने मंदिर में क्यों जगह दे रखी है, ये ऊपर से सनातन धर्म का ढोंग करती, अंदर से तो ये नंस। और जैसे ये लोग लौटे, वो सेवा तो हो गई, लौटे तो पुजारी ने कहा अपना डेरा यहाँ से उठा लो। इन्होंने समझाने की कोशिश की पर वो सुनने को तैयार ही नहीं। फिर तांगा आया, फिर तांगे वाले से पूछा कि भैया यहाँ कोई आगंतुक को और उसको कहीं रहना हो तो वो कहाँ जाए? वो दूसरे तांगे वाला था, उसने कहा यमुना किनारे एक धर्मशाला है, आप वहां चले जाओ। अब यमुना किनारे गए, धर्मशाला के सामने उतरे, मैनेजर ने कहा बेशक यहाँ रह लो, लेकिन धर्मशाला में कहीं भी दरवाजे नहीं है, न कमरों को और न बाथरूम को। पूछा ऐसा क्यों है? तो उसने बोला ये धर्मशाला है, यहाँ कोई पाप का काम ना हो जाए इसलिए दरवाजे नहीं लगा रखे। अब उस धर्मशाला में रहना चालू किया, सुबह उठ के गंगा जी पे जाके स्नान पानी करती है, और साड़ी का एक छोर गंगे दादी पकड़ती है, एक मनोहर दादी पकड़ती है, हवा में हिला हिला के साड़ी सुखा लेती हैं और मन में सोचती हैं कि गोपियां भी तो यमुना किनारे कृष्ण जी के साथ आया करती थी, तो हम वही गोपियां हैं, वही यमुना का किनारा है। और उसके बाद जब सुबह होती है तो जो भक्त गंगा जी की पूजा करने आते हैं उनको ज्ञान सुनाती हैं। फिर नवरात्रे आए तो एक भक्त आया, उसने कहा कि नवरात्रों में आप लोग देसी घी का हलवा बना के रोज खाना, आप देवियां 5 किलो चीनी, 5 किलो घी और 5 किलो सूजी देके गया। लेकिन कहाँ हलवा खाना था भाई, यज्ञ में तो सब बेगरी पार्ट चल रहा है, वो सारा का सारा सामान मधुबन पहुंचा दिया दादियों ने। लोग तो कहते हैं कि अपने सेंटर का पैसा बचा कर भी लोगों ने मधुबन में दिया, लेकिन दादियों ने अपने पेट का बचा करके भी मधुबन में दिया। तो आज देखो हम इस मधुबन को जो इतना समृद्ध देखते हैं, ये मेरी दादियों की मेहनत है, उनकी त्याग, उनकी तपस्या का फल। तो कितने अचानक की घटनाएं यज्ञ में घटी और हमारी दादियां पास होती रही। दादी हृदय पुष्पा, आप जानते हैं चंद्रमी दादी की बहन थी, उसको बाबा ने बेंगलोर भेजा। पूछा, बाबा बेंगलोर में मुझे कहाँ जाना है? तो बाबा ने कहा, स्टेशन से उतर के थोड़ी दूर चलना, एक पेड़ के नीचे बैठ जाना, वहां आपको कोई लेने आएगा। अब कौन सा पेड़ है, कैसा पेड़ है, कुछ नहीं पता, बस स्टेशन से बाहर निकल करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाना। तो दादी ट्रेन से उतरी, स्टेशन से बाहर निकली और फिर एक पेड़ दिखा बड़ा सा, उसके नीचे जाके बैठ गई, इस इंतजार में कि मुझे कोई लेने आएगा। वास्तव में किसी को बाबा ने प्रोग्राम नहीं दे रखा था कि दादी को कोई लेने आएगा, लेकिन भगवान के बोल तो सिद्ध होते। जहां वो पेड़ था उसके नजदीकी एक अच्छी सी बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग में एक भाई रहता था, अपने मुरली में नाम सुना होगा, अंगना भाई। अंगना भाई नाचता रहता, वो अंगना भाई देवी का भक्त था। उसने देखा बालकनी से कि पेड़ के नीचे दुर्गा मैया बैठी है, क्योंकि उसको दादी नजर नहीं आई, उसको दुर्गा नजर आई, और वो भगत था देवी का। तो वो दौड़ा और सोचा, दुर्गा मैया ऐसे कैसी बैठी है, तो इनको मैं घर ले आऊं। तो घर ले आया, दुर्गा समझ करके घर ले आया, दादी या बहन समझ के नहीं लाया। अब दादी को आती है सिंधी और टूटी फूटी हिंदी, और अंगना भाई को आती है अंग्रेजी और कन्नड़, कहीं भी भाषाओं को आपस में मेल नहीं है। दादी बोलती है, वो अंगना भाई नहीं समझते, अंगना भाई बोलता है, वो दादी नहीं समझती, आमने सामने बैठे हुए हैं घर में। तो दादी को दिव्य दृष्टि थी और दादी ने कहा, बाबा से पूछती हूँ। तो दादी ध्यान में चली गई, बाबा को कहती है, बाबा आपने बोला था ना एक भाई लेने आएगा, वो बराबर लेने आया और मैं उसके घर पहुंच गई हूँ, पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो कमाल देखी, बाबा ने दादी को ऐसी ताकत दी कि दादी ने उसके साथ अंग्रेजी में बात की, अंगना भाई के साथ। अचानक कितनी बातें हुई यज्ञ में अचानक, और हमारी दादियों की त्याग तपस्या के बल से धीरे धीरे यज्ञ वृद्धि को पाता गया। और उसके बाद फिर एक और अचानक घटना घटी। क्या? अचानक मम्मा अव्यक्त हो गई। किसी को मन चित्त भी नहीं था। जो लोग मम्मा के साथ रही हैं, भले मम्मा की बीमारी के बारे में भी समाचार मिल गया, लेकिन मम्मा के चेहरे से लगता नहीं था कि मम्मा इतनी छोटी आयु में बच्चों को छोड़ के चली जाए। और अचानक समाचार गया कि मम्मा अव्यक्त हो गई। लेकिन उस अचानक के पेपर में भी बाबा तो फुल पास हुए। बाबा ने तो एकदम कहा, बच्चे ड्रामा, ड्रामा में जो होता कल्याण के लिए होता है। कई बच्चों को ड्रामा का ये सीन पसंद नहीं आया था, तो बाबा ने कहा था, अब बाबा को बाप का भी और माँ का भी दोनों रोल प्ले करने हैं। और सचमुच बाबा ने दोनों रोल प्ले किए। और अभी मम्मा अचानक गई, उस सदमे से बच्चे उभरे भी नहीं थे। फिर क्या हुआ? अचानक बाबा चले गए। और जब दादी ने समाचार दिया, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गई, ड्रामा, तो किसी को विश्वास ही नहीं आया कि ये सच हो सकता है। बाबा ने तो कहा था, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा कैसी अचानक चले गए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इस पेपर में भी बच्चे पास हो गए। 69 की मुरली में बाबा ने कहा है कि इस पेपर में बहुत थोड़े बच्चे पास हुए, लेकिन जो बच्चे फेल हुए उनको भी बाबा फेल नहीं कहेंगे, क्योंकि साकार के साथ स्नेह इतना था कि ये जुदाई सहन करना इतना सरल काम नहीं था। पर बाबा ने कहा कि जो हुआ उसको भविष्य में गलप कर लेना, अर्थात भविष्य में ड्रामा के इस पार्ट को स्वीकार कर लेना, फुल स्टॉप लगाना, पक्का कर लेना। उसके बाद दीदी गई 83 में, और बाबा ने इस अचानक के शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किया 97 में। हमारी दादी चंद्रमणि 11 मार्च 1997 को रात 10:40 पे बेंगलोर में अव्यक्त हो गई। न दादी बीमार थी, अच्छी भली दिन में दादी ने क्लास कराई थी, बस रात को हल्का सा दर्द हुआ था और बहुत थोड़े से समय में दादी अव्यक्त हो गई। मेरी विजय बहन कहती मुझे तो विश्वास भी नहीं हुआ कि दीदी चली गई। और तब बाबा ने दादी के निमित्त जो भूखा संदेश आया उसमें जब गुलजार दादी गई तो बाबा ने कहा बच्ची अचानक के खेल को देख करके सोच रही हो कि ये सब क्या हुआ, लेकिन बाबा ने तो पहले से ही बता रखा है कि ड्रामा में अचानक अचानक के बहुत सारे खेल अब जल्दी जल्दी होने हैं और उन बच्चों में आप उनमें आपको एवर रेडी रह करके पास होना है। फिर बाबा ने याद कराया कि देखो दिल्ली के मेले में भी अचानक ही सफलता हुई। 1996 में सीरी फोर्ट में एक हेल्थ फेयर हुआ था जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री खुराना जी, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी और भी बड़े बड़े वीआईपी आए थे, बहुत अच्छी सेवा हुई थी। और उसके निमित्त 1997 में 18 जनवरी पे जो बाबा ने मुरली चलाई थी उसमें जगदीश भाई जी के साथ वार्तालाप करते हुए बाबा ने बधाई दी थी दिल्ली के मेले की और आगे के लिए प्रेरणा भी दी थी कि दिल्ली में इससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम होने चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो दिल्ली के मेले में सफलता भी अनायास हुई और आपकी दादी चंद्रमणि का जाना भी अनायास और अचानक ही हुआ, लेकिन दादी इस अचानक के पेपर में फुल पास हो गई। दादी बिल्कुल एवर रेडी थी। बाबा ने कहा कि अंत समय में उसको कोई सेवा का संकल्प भी नहीं था, हालांकि दिन में सेवा करवाई थी। तो दिन में जो व्यक्ति सेवा करता है, क्लास करवाता है, भाई बहनों से मिलता है तो उसको कुछ ना कुछ स्मृति तो रहती है, लेकिन दादी को कोई स्मृति नहीं थी। इवन कि दादी वतन में पहुंच गई तो भी दादी ने गुलजार दादी को कहा कि देखो मैं आपको हमेशा कहती थी ना कि वतन में आपको कैसा लगता है, आज तो बाबा ने भी मुझे वतन में बुला लिया और मैं वतन में खूब आनंद ले रही हूँ। उसको ये भान नहीं था कि मैं शरीर छोड़ के वतन में आ गई। तब बाबा ने कहा इस बच्ची को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जिसको ये भी भान नहीं है कि मैंने देह का त्याग कर दिया है और मैं वतन में आ गई हूँ। जैसे माखन से बाल निकलता है ऐसे बच्ची ने देह का त्याग किया, इसका पुण्य का खाता इतना जमा था कि इसकी अंतिम घड़ी इतनी सुहेली हो गई, ये बाबा ने भोग के संदेश में बोला। और उसके बाद तो अचानक की कितनी घटनाएं घटी, सफलताएं भी अचानक हुई और पेपर भी अचानक आए। और उसके बाद बाबा ने बार बार अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास इसको मुरलियों में बहुत प्रयोग किया। हम सबके सामने भी कब कौन सा अचानक पेपर आ जाए, क्योंकि एक बार बच्चों ने बाबा से पूछा बाबा अचानक अचानक इतनी इकट्ठी मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, इनके पीछे राज क्या है। ये 1984 की मुरली है जब भोपाल कांड हुआ था, तब बच्चों ने सवाल पूछा था। तो उसमें बाबा ने कहा था कि आत्माओं के 63 जन्मों के जो रहे हुए हिसाब किताब है वो सारे के सारे इस अंतिम जन्म में पूरे होने, क्योंकि इसके बाद आत्माओं का और जन्म नहीं है, कलयुग समाप्त हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो नौकरी पेशे वाले हैं वो जानते हैं कि दिसंबर में सबकी छुट्टियां बची हुई होती हैं, तो क्या करते हैं, 15 की 15 छुट्टी लेकर के उनको फिनिश करते हैं, क्योंकि नहीं तो वो अगले साल तो मिलेंगी नहीं, तो बची हुई हिसाब किताब को हम दिसंबर में पूरा करते हैं, क्योंकि वो लास्ट मंथ होता है और ये लास्ट युग और युग का भी लास्ट समय है। तो जिसका उधार है, लेन देन है, वो सारा का सारा चुकतू हो रहा है। तो देखने में आता है कि किसी आत्मा के अचानक कई पेपर आ जाते हैं, अचानक धन का घाटा लग जाता है, अचानक अकाल मृत्यु हो जाती है परिवार में, अचानक कोई बड़ी बीमारी आ जाती है। तो सवाल उठता है कि इस बिचारी के इतने हिसाब किताब है, क्या कि एक से उभरता है तो दूसरा, दूसरे से उभरता है तो तीसरा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ज्ञानियों के भी हिसाब किताब बचे हुए हैं। योग बल से सारे चुकतू नहीं होते हैं तो इस प्रकार से चुकतू करने पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा आप देखेंगे कि तीन तरीके से जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू होंगे, जल्दी जन्म और जल्दी मृत्यु, इसको तो हम जानते हैं। जल्दी मृत्यु होना, छोटी आयु में मृत्यु होना, ये भी कर्म का फल है, और जन्म के समय कष्ट होना, ये भी कर्म का फल है। तो मृत्यु कष्टकारी, जन्म कष्टकारी, इस तरीके से आत्माओं को अपने कर्मों का फल मिलता है। जैसे अभी आपने समाचार सुना, 2 दिन पहले चंबल घाटी में एक नाव उलट गई, 50 लोग उसपे सवार थे। उस समय तक तो दिखा रहे थे कि 13 लोगों की लाश मिली, 7 लोगों की लाश मिली और 13 लोग लापता मिले, ऐसे मतलब 50, उनमें से कुछ लोगों को तैरना आता होगा तो आ गए होंगे। तो अचानक कहीं फैक्ट्री में आग लग जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं अचानक कोई विस्फोट हो जाता है, और बीमारी के कारण तो हो ही रहा है। तो ये अकाल मृत्यु का बाजार गर्म है, आत्माओं के हिसाब चुकतू हो रही है। जन्म बड़े कष्टदायक है, इजी जन्म नहीं, ये भी कर्म का हिसाब है। और आप देखेंगे कि जो जन्म होते हैं वो भी अभी अभी जन्मा और अभी अभी बच्चा चला गया, तो वो भी हिसाब किताब है। अभी जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने 40 लोगों की हत्या की, अब गवर्नमेंट तो उसको एक ही सजा देगी फांसी की, एक हत्या के बदले एक फांसी होती है, तो 39 की सजा तो बाकी है ना, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती, तो ऊपर वाली गवर्नमेंट देती है। कैसे देती है, वो आत्मा 39 बार गर्भ जेल भोगेगी, गर्भ से निकलेगी और डेथ हो जाएगी, और फिर गर्भ में जाएगी, फिर डेथ हो जाएगी, मतलब उसको जीवन का वरदान नहीं। जीवन का वरदान कब मिलता है, जब कोई अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं तुम जुग जुग जियो, और कोई बुरा काम करता है तो हम कहते हैं ये तो बाबा ने मुरली में भी बोला कि जब बच्चा कुछ करता है तो माँ बाप कहते हैं ये तो मुआ भला, तो ये एक तरह की बद्दुआ है। तो वो बच्चे, वो आत्माएं जिनके इस प्रकार के कर्म थे, फिर गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती उनको, लेकिन ये जो प्राकृतिक सजा है ये मिलती है, अर्थात बार बार जन्म बार बार मृत्यु, जीवन का वरदान ही नहीं मिलेगा। तो उसमें जो 3 बातें बताई हिसाब किताब की, नंबर 1 मन से कोई पागलपन आ जाएगा, मन विक्षिप्त हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, कुछ का कुछ बोलेगा, लोग कहेंगे तो पागल हो गया, तो एक प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता। नंबर 2 प्रकृति के द्वारा कोई ना कोई नुकसान होगा, जैसे किसी जानवर ने काट लिया, बाढ़ आ गई, छत गिर गई, पेड़ के नीचे दब गई, ये प्राकृतिक सजाएं हैं। और 3री प्रकार की बीमारी, इसको भी प्रकृति की देन मानेंगे। और 3री प्रकार की संबंध संपर्क के द्वारा, परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार, किसी ने धोखा दे दिया, संपत्ति हड़प ली, किसी ने झूठा मुकदमा दायर कर दिया, बच्चे ने झूठ खूठ माँ को कहीं छोड़ दिया, भरण पोषण की तकलीफ आ गई, इस प्रकार की जो तकलीफें हैं। तो 3 तरीके बाबा ने कहा, इनमें से प्रकृति वाली सजा ऊपर नहीं मिल सकती, तो प्रकृति वाली सजा यहाँ मिलेगी, और जो मित्र संबंधियों के द्वारा जो सजा मिलती है वो भी यहां मिलेगी। बाकी जो आत्मा अकेली सजा भुगती है, जिसमें किसी और का कनेक्शन नहीं है, वो सजाएं उसको ऊपर मिलती। अब बात आती है अचानक के पेपर में हमको एवर रेडी कैसे रहना है। तो एवर रेडी के लिए जो हमारे चार सब्जेक्ट है, उन चारों सब्जेक्ट में हम कैसे एवर रेडी रहें। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। तो ज्ञान में एवर रेडी रहने का मतलब क्या है भाई? हम एवर रेडी हैं कैसे पता पड़े? ज्ञान का मतलब है जानना। आज भी बाबा ने कहा आदि मध्य अंत का ज्ञान आप बच्चों के पास है। कोई पूछे आपसे कि क्या आप ड्रामा का राज जानते हो, तो आप झट कहोगे हाँ हम जानते। तो हम नॉलेजफुल है ना, हम सब कुछ जानते हैं ना, हमने भगवान को जान लिया ना, खुद को भी जान लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने भगवान के दिल को जान लिया? भगवान के दिल में क्या है, क्या हम जानते? भगवान को तो जान लिया, उनका रूप ज्योति बिंदु है, निराकार है, परम धाम वासी है, संगम युग में अवतरित होते हैं। कर क्या भगवान के दिल को जान लिया? भगवान का दिल कहाँ है, कैसा है, उसमें क्या है? वास्तव में मुरली ही भगवान का दिल है। भगवान के दिल में क्या भरा हुआ है? ये मुरली कहां से निकलती है? वहीं से तो निकलती है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को दिल की बात सुनाता है, फिर कहता है देख बेटा मैंने अपना दिल निकाल के तुझे दे दिया, या कहता है मैंने अपना दिल तेरे सामने खोल दिया, अब तेरी मर्जी है तेरे को क्या करना है। या कई बार कोई उदास होता है तो उसको हम कहते हैं भाई इसका दिल खुलवाओ, इसका दिल पढ़ो, इसके दिल में क्या है। तो भगवान रोज सुबह अपना दिल हमें दे देता है। तो भगवान के दिल को तो जान लिया। अब जानने के बाद हमने क्या किया, उसकी कितनी कदर की? भगवान के दिल में जो कुछ है, जो उन्होंने बोला, हमने उसकी कितनी कदर की? उसने जो बोला ठीक है बाबा, आपने जो बोला मैं ये भी करूंगा, आपने जो बोला मैं ये भी करूंगा, एक एक लाइन पढ़ते जाएं और हम बाबा को विश्वास दिलाते जाएं, बाबा आपने जो कहा है ना वो मुझे करना ही है। चेक करें ये लाइन बोली, ये मैंने कर ली क्या कि अभी बाकी पड़ी है? जैसे आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, ये एक ही महामंत्र है, बाकी तीक तीक में विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, इसी से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो क्या मैं ये कर रहा हूँ? क्या मैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद कर रहा हूँ? क्या मैं इसको मान रहा हूँ? भगवान ने दिल तो खोल दिया, मैंने उस दिल की कितनी कदर की और कितना स्पीड से कर रहा हूँ। ऐसे नहीं हाँ मानूंगा, मान तो रहा हूँ, नहीं, अभी तो समय बहुत कम है, गा गा करेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? एक होता है करूंगा और एक होता है करना ही है, 20 नाखून का जोर लगा के भी करना है, कुछ भी हो जाए। दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब होता है करना ही है, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे श्री राम ने बाप को जो वचन दिया उसका पालन किया, भीष्म पिता मैंने अपने पिता को जो वचन दिया उसका पालन किया, तो क्या मैंने अपने पिता को जो वचन दिया कि मैं आपके हर आज्ञा का पालन करूंगा, आपका आज्ञाकारी बच्चा हूं, मैं उस पे चल रहा हूं, एक सेकंड सेकंड का हिसाब रख रहा हूं, इस सेकंड भी मैं श्रीमत पे हूं, इस सेकंड भी मैं श्रीमत पे हूं, इस सेकंड भी मैं श्रीमत पे हूं, सेकंड सेकंड श्रीमत की पटरी पर, इसको कहेंगे एवर रेडी, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। 69 की एक मुरली में बाबा ने बोला बातें तो बाबा ने आप बच्चों को सब बताई हैं, लेकिन समय पर याद आना उसको कहते हैं एवर रेडी तीव्र पुरुषार्थी। तो याद किसको आएगा समय पे, जो घड़ी घड़ी बाबा की मुरली की बात याद करता रहेगा। आज बाबा ने कहा जो ज्ञान है वो यहाँ ठहरना चाहिए, ऐसे नहीं कि बह जाए, बह जाएगा तो मौके पे याद नहीं आएगा, लेकिन यहाँ कुंड है उसमें जाके ठहर गया, तो जरूरत पड़ी और ज्ञान की बात निकाली और यूज की। योग में एवर रेडी का मतलब क्या है? योग की सब्जेक्ट में एवर रेडी का मतलब है मन को जब चाहे, जहां चाहे, जिस स्थिति में चाहे, जितनी देर लगाना चाहे वहां लगा सके। बुद्धि है मां, मन है बच्चा। अब मां ने कहा जा बेटा परम धाम जा, और बच्चा देखो तो गलियों में घूम रहा है, तो बच्चा आज्ञाकारी तो नहीं हुआ, वरेडी तो नहीं हुआ। वो जैसे माँ कहती है बेटा मूंग की दाल खरीद के ले, और रास्ते में मदारी का खेल चल रहा था, बच्चा वहां खड़ा हो गया और माँ ने पानी चूल्हे पे चढ़ा रखा है, मूंग की दाल आए तो दाल बनी। अब बच्चा घंटे बाद आया, माँ पूछती है क्या हुआ, तो कहता है मैं तो मदारी का तमाशा देखने लगा। तो ये मन ऐसे तो नहीं करता, परम धाम जा तो परम धाम गया और वहां बैठे ही रहना। लेकिन इसके लिए माँ भी स्ट्रोंग चाहिए, यानी कि बुद्धि रूपी माँ स्ट्रोंग चाहिए। बुद्धि रूपी नेत्र जितना अधिक क्लियर होगा, उसको जितना परम धाम स्पष्ट दिखाई देगा, मन रूपी बच्चा उतना अधिक उसको फॉलो करेगा। माँ स्ट्रोंग होगी तो बच्चा फॉलो करेगा, अगर माँ ढीली ढाली होगी तो बच्चा भी चंचलता करेगा, लापरवाही करेगा। इसलिए बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाना है। सतयुग कहा तो सतयुग में पहुंच जाए, और कितनी देर सतयुग में रमण करना है वहां रमण करता रहे। सतयुग के बाग बगीचे, फल फूल, सतयुग की धरनी, सतयुग के विमान, सतयुग की राजाई पोशाक, वो सब दिखता ही रहे। कितनी देर परम धाम में टिकना है, तो वहां बिंदु बन करके टिक गई, वहां बैठ करके ऐसे लगे कि मैं आ गया, शरीर छोड़ के नीचे की दुनिया को झांक के देख रहा हूं, बड़ी अशांति है, वहां नहीं जाना, मेरा हिसाब किताब इस दुनिया से चुकतू हो गया, मैं ऊपर बाबा की गोदी में बैठा हूं। जैसे माँ बच्चे को गोदी में लेके कहती देख बेटा नीचे वो तमाशा चल रहा है, तो ऐसे लगे कि मैं गोदी में बैठा हूं और वहां बैठ के नीचे का तमाशा देख रहा हूं। इतना डिटैच हो जाए मन और बुद्धि, संस्कार फिर उनको फॉलो करते हैं। सूक्ष्म लोक में गए तो वहां फरिश्ते बन के बैठ गए और बाबा से लाइट और माइट आ रही है। एक मुरली में बाबा ने बोला था अगर आप चलते फिरते लाइट के कार में हैं, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो श्रीमत प्रमाण होगा। अर्थात अगर हम लाइट के कार में हैं, तो हमारे से कोई भी डिसीजन गलत हो ही नहीं सकता। लाइट के कार में तो हम आत्म अभिमानी हैं, डिटैच हैं, तो चलते फिरते हमको ऐसे लगे कि हमारे शरीर के चारों ओर एक ओरा है, और सामने वाले को भी हम ऐसे ही देखें कि ये ओरे में है आत्मा। तो बाबा ने कहा था रॉयल दृष्टि किसको कहते हैं, ये सामने एक फरिश्ता आ रहा है, फरिश्ता चल रहा है, फरिश्ता लिख रहा है, फरिश्ता बोल रहा है, इसको कहते हैं रॉयल दृष्टि। तो योग के सब्जेक्ट में एवर रेडी पेपर भी यही आएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास बाबा क्यों करा रहा है, आप बहुत व्यस्त हैं और ट्रैफिक कंट्रोल बजा और आप एकदम अशरीरी हो गए, तो आपकी ये प्रैक्टिस अंत समय में आपको बहुत काम आएगी। धारणा के सब्जेक्ट में एवर रेडी का मतलब क्या है? इंद्रियों को श्रीमत की पटरी पे चलाना, अर्थात स्वराज्याधिकारी बन करके रहना। हमारी दो प्रकार की इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं मन बुद्धि संस्कार, और स्थूल इंद्रियां हैं ये पांच, देखना सुनना बोलना छूना। तो सूक्ष्म इंद्रियों की चर्चा तो हमने योग के सब्जेक्ट में कर ली, अब ये पांच। बाबा ने कहा आंखें भी बंद नहीं करनी, देखना है, लेकिन देखते हुए भी डिटैच, देखते हुए भी नहीं देखना। जैसे कैमरा होता है ना, तो कैमरे को आप यूं घुमाते रहो, मोबाइल को यूं घुमाते रहो, उसमें फोटो नहीं आएगी। फोटो कब आती है? चाहे कैमरा हो आप क्लिक करेंगे, चाहे मोबाइल आप क्लिक करेंगे, तो बेशक हम देख रही हैं, असर नहीं होगा। असर कब आता है? ये बहुत सुंदर है, आपने क्लिक कर दिया तो असर हो गया, ये कुरूप है, असर हो गया, ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये जाना पहचाना है, ये पराया है, ये बीके है, ये नॉन बीके है, आपने क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया तो उस दृश्य का नेगेटिव अंदर बन गया। अगर हम केवल साक्षी होके देखते हैं तो देखने का असर नहीं पड़ेगा। तो आंख से देखना है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं देखना, क्योंकि जब हम देखते हैं तो अंदर की ऊर्जा यूज होती है। जैसे अब ये लाइट जल रही है तो ये फ्री में थोड़े जल रही है, बिल आ रहा है इनका। ऐसे ही आंखें खुली रहती हैं तो एक बिल आता है। किसके पास आता है? आत्मा के पास बिल आता है। आत्मा की इतनी शक्ति कंज्यूम हो गई, और देखने से तो सबसे बड़ा बिल आता है, क्योंकि आंखों से जब जितना ज्यादा देखते हैं उतनी ज्यादा शक्ति आत्मा की कम होती है। इसलिए तो कहते हैं आंख गई तो जहान गया। आंख सबसे प्रमुख इंद्रिय है, इसलिए हम कम देखें, नहीं जरूरत है तो ना देखें, क्योंकि अधिक देखेंगे तो असर भी आएगा। मान लीजिए आप मोबाइल में यूट्यूब में ये देख वो देख, टीवी के चैनल ये चेंज कर रहे हो बार बार, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का असर तो आ ही जाएगा। भले आप सेकंड सेकंड में उस रिमोट को घुमा रही हो, तो जब जरूरत नहीं है तो क्यों घुमा रही हो? ऑनलाइन पहले से मन में डिसाइड करो कि ऑनलाइन में क्यों जा रहा हूं, भाई मुझे किसी की क्लास सुननी है, तो उस क्लास को ही ओपन करो, उसके अलावा दाएं बाएं देखो ही मत। अगर ऊर्जा बचानी है, अगर बिल कम से कम आए, ऊर्जा बचानी है तो कम से कम देखना है। कान, बाबा ने कहा व्यर्थ सुनो ही मत, सुनेंगे तो असर आएगा। कहते एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, लेकिन यहां से यात्रा करती हुई बात जब यहां तक जाएगी थोड़ा असर तो छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी क्या? तो इसलिए इधर से सुनिए, इधर से ही निकाल दो। आजकल तो बातों का संसार है बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बहुत बातें हैं दुनिया में, देख लो ब्राह्मण परिवार में भी देख लो, व्हाट्सएप के द्वारा बातें घूमती रहती हैं। तो कानों के ऊपर भी नियंत्रण है, इसलिए कहते हैं जब कोई बच्चा गलत काम करता है ना तो उसका कान पकड़ते हैं। कान क्यों पकड़ते हैं? गलती अधिक सुनने से ही होती है, इसलिए अपना कान खुद ही पकड़े, मुझे नहीं सुनना, काम की बात नहीं है, मुझे नहीं सुनना। सुनने से फिर व्यू भी बन जाते हैं। आज सुबह मुझे कोई एक भाई कोई बात सुना रहा था, किसी भाई की। मैंने कहा अगर मेरे सामने वो भाई आएगा ना, मैं उसको कहूंगी तुम बहुत अच्छे भाई, तुमने मुझे दो बात सुनाई, मैं उसकी 10 महिमा करूंगी। मैं क्यों व्यू बनाऊं किसी के बारे में भाई? मैं मेरे लिए तो वो देवता तुल्य है, मेरे लिए तो फरिश्ते जैसा भाई, तो मैं क्यों किसी के लिए व्यू बनाऊं किसी के कहने से? मेरे को बाबा ने क्या कहा? बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर आपसे कोई पूछे ना फलाना भाई कैसा है, आप उसको को इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, फरिश्ते जैसा है, तो मेरा पुण्य का खाता जमा हो गए, और मेरे लिए तो हर एक अच्छा है भाई। मेरी आपसे कोई शत्रुता है? आपकी मेरे से कोई है? तो आप सब देवता हो, फरिश्ते हो, भूतपूर्व देवता और भविष्य में देवता बनने वाले, मेरी नजर में तो आप एक एक कितने महान हो। आपके गुणों की लिस्ट बनाना शुरू करूं तो पन्ने पे पन्ने भर जाएंगे, पर लिस्ट पूरी नहीं होगी, आप इतने महान हो। तो किसी की भी सुननी नहीं कोई बात, कोई घटना। तीसरी, बोलना, ये दो काम करता है, एक खाता है और एक उगलता है, बाहर की चीज भीतर ले जाता है और भीतर की चीज बाहर निकलता है, दोनों में सावधानी चाहिए, इनपुट और आउटपुट। तो भोजन में आसक्ति नहीं, किसी भाई ने मुझे कहा जैसे कार में पेट्रोल डलता है तो ड्राइवर को कोई मजा आता है क्या, मीठा है कि खट्टा है कि, तो गाड़ी में भोजन ऐसे डालो जैसे कार में पेट्रोल डल रहा है, स्वाद से परे, नहीं तो बाबा भूल जाएगा। फिर अगले दिन फिर याद आएगा, कल खाया तो बहुत स्वादिष्ट था, वही खरीदो वही लाओ, बाजार में नहीं मिला तो मुंह छोटा सा हो जाएगा। अरे क्यों नहीं मिला, वो दूर वाली मंडी में नहीं गए तुम, ये नजदीक वाली में तो बढ़िया चीज मिलती ही नहीं। फिर जो खरीद के लाने वाला होगा उस पर भी दो चार डांट पड़ेंगी। तो ये देखो ये जीव क्या करती है, रिश्ते बिगाड़ देती है, शांति बिगाड़ देती है, और हाजमा तो पूरा ही बिगाड़ देती। तो जो मिला प्रभु प्रसाद, इतना प्यार से खाओ, इतना प्यार से खाओ, बाजू वाले को भी लगे कि इसको कितना स्वाद आ रहा है भोजन खाने। और जो भीतर से बाहर आ रही है उसके ऊपर भी सेंसर होना चाहिए। एक तो दांत 10 शब्द बोलने हैं, वहां 8 ही बोले, 2 बचाए ना। बाजार में अगर हमने 10 रुपए की चीज 8 रुपए में खरीदी तो छलांग मारते आते हैं, आज हमने 2 रुपए बचाए, 2 रुपए बचाए। लेकिन अगर हमने 2 शब्द बचाए तो वो 2 रुपए से भी ज्यादा अमूल्य, क्योंकि 2 रुपए तो यही रह जाएंगे, लेकिन हमारी बचाई हुई ऊर्जा वो हमारे साथ 5000 साल रहेगी। अब आप कहेंगे बहन जी 5 मिनट ऊपर हो गए, आप भी तो अपने शब्दों को बचाओ ना। देखो मुझे 5 मिनट बाद में मिली थी क्लास, तो अब जब तक पूरा सिलेबस ना हो तब तक मैं कैसे शब्दों को बचाऊं, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा मुझे। अब अगली बात आती है स्पर्श, त्वचा स्पर्श का भी लोगों को बहुत सुख होता है, सॉफ्ट चीजें चाहिए। मैं एक बार सूरत में गई थी, किसी ने मुझे सत्संग के लिए बुलाया था, उसने 10 बजे का टाइम दिया महिला ने, और मैं 10 बजे पहुंच गई पर उसका घर सारा बिखरा पड़ा था। मैंने कहा माता जी मुझे तो बुला लिया, तैयारी की नहीं। कहती है बेटा क्या करूं, कल आपको निमंत्रण दिया था, रात को मेरी बहू रूठ के पियर चली गई। मैंने कहा क्या हुआ, आप तो इतने अच्छे हो, आपसे तो कोई बहू रूठ ही नहीं सकती। कहती है नहीं नहीं मेरे से नहीं रूठी, मेरे बेटे से रूठ गई। मैंने कहा आपका बेटा भी बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ उसको, हुआ क्या। कहती आ बेटा, तो वो मुझे वो ड्रॉइंग रूम में ले गई, वहां एक गलीचा पड़ा था इतना बढ़िया, 25,000 का गलीचा। कहती है ये 2 महीने पहले खरीदा था, पर मेरी बहू पड़ोसन का गलीचा देखा है, वो 35,000 का इससे भी ज्यादा सॉफ्ट था। तो घर में आके कहती है तो बेकार है, मुझे 35,000 वाला चाहिए, इसको लेके जाओ और वो वाला ला के दो। तो बेटे ने कहा अभी सीजन चल रही है, 2 महीने में सीजन पूरी हो जाएगी तो मैं गलीचा बदलवा के ला दूंगा। अब बेटा कल ही सीजन पूरी हुई थी और कल ही वो बेटे के पीछे पड़ गई गलीचा बदलवा के ला। तो बेटे ने कहा 2 दिन और रुक जा, पर वो रुकी नहीं, अपनी पियर चली गई, भाई का घर बाजू में ही है। तो मैंने कहा माता जी उसको गलीचा तो सॉफ्ट चाहिए, पर रिश्ते तो खुरदुरे कर दिए, अब ज्यादा कीमत रिश्तों की है कि गलीचे की है, ज्यादा लॉन्ग लिविंग क्या है, रिश्ते ज्यादा। अरे भाई गलीचे के लिए रिश्ते खुरदुरे क्यों करते हो, रिश्तों को चिकना बना करके रखो ना, इतने चिकने बना के रखो कि कहीं ना अटके आपस में। तो सॉफ्ट चाहिए, और इस सॉफ्ट के कारण हम कितने रिश्ते अटका देते हैं, कितने संबंध खुरदुरे कर देते हैं, संबंधों में दरारें पैदा कर देते हैं। और फिर पांव, अब हम चलना नहीं चाहते लेकिन जितना दौड़ेंगे उतना अच्छा। बाबा ने एक मुरली में कहा था यज्ञ की जितनी हार्ड सेवा करते हो तो उतने एक तो स्वस्थ रहते हो और एक अलग से घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है, समय बच जाता है। तो चाहे हम घर में हो चाहे हम यज्ञ में हो, इस मशीन को यूज करें। वैसे भी ये आखिरी मशीन है, कहते हैं डूबती नाव से जितना लोहा निकाल लो, ये तो डूबती नाव है, जाएगी फिर 5,000 साल बाद ही दिखेगी, इसलिए इससे जितना काम ले सकते हो ले लो, जाने वाली है ये। इसको बहुत आराम से पपोड़ पपोड़ के मत बिठाओ, ये तो टैक्सी है, घुमाओगे तो कमाई होगी, बिठा दोगे तो क्या होगा, कमाई नहीं होगी, बाकी अपने समय पे तो ये जाएगी। तो इंद्रियों पे नियंत्रण, इंद्रियों का मालिक बन के रहना। और उसके बाद चौथा सब्जेक्ट है सेवा, वो मैं सार में ही सुना देती हूँ। सेवा में एवर रेडी का मतलब क्या है, 4 प्रकार की सेवाएं हैं हमारी। नंबर 1 मनसा, नंबर 2 वाचा, नंबर 3 कर्मणा, और चौथी हम कहते हैं यज्ञ सेवा। सबसे सरल लगती है मनसा सेवा, लेकिन सबसे डिफिकल्ट है मनसा सेवा। कभी भी कोई भी कहीं भी कितनी भी कर सकता है, उसमें एरिया का झंझट नहीं, बूढ़े जवान का झंझट नहीं, पैसा नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कर्फ्यू लगा है, इन सब बाउंड्रीज से परी है मनसा सेवा। लेकिन मनसा सेवा में मन बहुत शुद्ध चाहिए। जैसे आपने देखा ना, वो गेहूं में अपन वाटर सप्लाई करते हैं तो फवारे होते हैं, तो फवारे के जो छिद्र होते हैं ना वो सारे क्लियर होते हैं, तो पूरा फोर्स से पानी जाता है। मान लो फवारे के आधे छिद्र बंद तो क्या होगा, पूरा पानी नहीं जाएगा। तो मनसा सेवा भी एक प्रकार से फवारे से हम लोगों को शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इसके आधे छिद्र बंद, इधर वालों से मेरी थोड़ी बनती नहीं है, इधर के आधे छिद्र बंद हो गए, तो इधर तो शुभ भावना शुभकामना जाएगी नहीं, और वो आधे छिद्र इधर वाले आधे भी बंद कर देंगे, क्योंकि जंक लगेगा तो वो फैलेगा ही फिर। इसलिए छिद्र सारे खुले होने चाहिए, मतलब हर एक के लिए शुभ भावना, हर एक के लिए शुभकामना। अच्छा, किसी से कोई बात अनबन हो गई, सामने वाले ने कर दी, लेकिन मैं तो समझदार हूं ना, अनबन को खत्म कर दूं। कितनी देर लगती है अनबन को खत्म करने में? पीछे से जाके प्यार से कंधे पे हाथ रखो, बहन जी ओम शांति, भाई जी ओम शांति, अनबन दो मिनट में खत्म हो जाएगी, दो सेकंड में खत्म हो जाएगी। मेरे हाथ में ये पावर तो है। तो मनसा सेवा के लिए मन बड़ा मजबूत चाहिए, वाचा सेवा के लिए। आज बाबा ने कहा पहले बाप का परिचय दो। हम आमतौर पे आत्मा का लेसन पहले देते ही हैं, मुरली में बाबा कहते हैं अल्लाह फुर बे, लेकिन आत्मा और परमात्मा का लेसन हम पहले दें, सार ये है, क्योंकि आत्मा को भी समझाएं। दादी जानकी कहती थी जब तक किसी को आत्मा समझ में ना आए आगे मत बढ़ो। तो अनुभूति तो हो उसी की, आत्मा क्या चीज है। अर्थात वाचा सेवा भी हम श्रीमत प्रमाण करें जैसे हमें बाबा सिखाता है। कर्मणा सेवा आज का वरदान था, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति रहे तो काम ऐसे लगेगा जैसे हम खेल खेल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो चाहे हम घर में काम करें, चाहे यज्ञ में स्थूल सेवा करें, हमको ऐसे लगे हम सेवा नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, हम खेल खेल रहे, मनोरंजन है। और यज्ञ सेवा अर्थात धन से सेवा, उसके लिए भी बाबा ने शायद कल की मुरली में ही कहा था, किसी की दबी रहेगी धूल में और किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए, सफल उसी की जानी है जो धनी के नाम लगाए। पर सेवा करके हमको ये ना आए कि रिटर्न मिले। बाबा ने कहा निस्वार्थ सेवा का फल सबसे अधिक होता है, और एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता ही ना पड़े। गुप्त सेवा, गुप्त सेवा का फल अधिक होता है। जमीन में बीज बोते हैं ना, वो गुप्त होता है तभी तो वो फल देता है। आप उसकी मिट्टी हटा के सबको दिखा दो कि देखो ये गेहूं के बीज पड़े हैं, चिड़िया खा जाएगी, एक भी नहीं उगेगा। इसलिए लोग कहते हैं दुनिया में सबसे समझदार किसान होता है, बीज डाल के ऊपर मिट्टी डाल देता है। तो हम भी कौन है, किसान है, 5000 साल के लिए फसल बो रही, तो बीज डालो और ऊपर मिट्टी डाल दो, किसी को पता ही ना पड़े हमने क्या किया। और अब तीसरी बात, बहुत काल का अभ्यास, इसको तो मैं जल्दी पूरा कर दूंगी। जैसे एक बच्चा मार्च में पेपर देता है, उसकी पढ़ाई जुलाई से शुरू होती है, तो जुलाई में जो पाठ याद करेगा उसका अगस्त में पेपर होगा, उसके बाद अक्टूबर में पेपर होगा, दिसंबर में पेपर होगा, बार 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 पेपर होगा, तो वो जो पाठ है उसको बार बार याद करेगा, बार बार लिखेगा। 6 बार याद किया, 6 बार लिखा, वो पाठ कितना पक्का हो गया। अब जब मार्च में वो प्रश्न आएगा तो आराम से लिख देगा, बहुत काल का अभ्यास हो गया ना। एक बच्चा है जिसने जनवरी में एडमिशन लिया और कहता है कोई बात नहीं, मैं तो जब मार्च में पेपर शुरू होंगे ना तभी किताब पढ़ूंगा। अब मार्च आया, किताब पढ़नी शुरू की, एकदम तो लगता है किताब पास में रखी है, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। अब किताब रह गई घर में, परीक्षा भवन में परीक्षा देने गया, वहां पे वो जो परीक्षक था वो अच्छा था, दाढ़ी मूछ वाला उसका मुंह देख के ही डर गया, और जो याद किया था ना वो सारा भूल गया। अब जब पेपर देने बैठा तो एक भी बात याद नहीं आई, 0/0। तो एक का था भूतकाल का अभ्यास और एक का था अभी अभी का अभ्यास, तो धोखा हो गया ना। ऐसे ही हमारे साथ भी है, अगर हमारा भूतकाल का अशरीरी बनने का अभ्यास, एक सेकंड में अशरीरी। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब आप बहुत बिजी हो उस समय खुद को कमांड दो अशरीरी, और अगर आप अशरीरी बन गए तो आप अंतिम पेपर में भी पास हो जाएंगे। लेकिन आपने कमांड दिया शरीरी और बने ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं भ्रकुटी में विराजमान हूँ, फिर देह का भान आ गया। तो बाबा ने कहा आपकी तैयारी पूरी नहीं है, और अंत समय इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप आत्मा आत्मा अभ्यास कर पाए। अंत में एक सेकंड मिलेगा, टिक जाओ, और टिक गए तो पास फुल मार्क्स। और ऑर्डर आया टिक जाओ, और हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा ड्रेस को लूज रखो, कल के वरदान में था ड्रेस लूज तो पास विद ऑनर हो जाएंगे, और ड्रेस टाइट, सर्दी में होती है ना स्वेटर टाइट, जरा खींचना, एक को बुलाते हैं इधर से खींचना जरा, तो जिसकी शरीर रूपी ड्रेस टाइट होती है ना वो भी कहता जरा कमेंट्री करना, ये शरीर रूपी ड्रेस उतरे बहुत टाइट है, और जिसकी लूज होगी उसको ना कमेंट्री की जरूरत है ना किसी की सहयोग की जरूरत है, जब चाहेगा उतार देगा, वो फिर पहनते पहनते लूज हो जाती है स्वेटर। तो ये शरीर रूपी ड्रेस भी बार बार उतारो, बार बार पहनो, इतनी लूज हो जाए कि संकल्प किया एक सेकंड में परम धाम, एक सेकंड में सुक्ष्म लो तो वहां पहुंच जाए। तो कैसी है आपकी ड्रेस? आप यहाँ ड्रेस को लूज करने आए हो, जिसकी टाइट थी वो भी इतना लूज करके जाना कि अपने आप उतर जाए शरीर रूपी ड्रेस, और आत्मा एक सेकंड में परम धाम पहुंच जाए। ओम शांति। अभी हम देखेंगे हमारी ड्रेस कितनी लूज है। अपना अपना पेपर लेना और अपने आप को नंबर देना।
सांसों की माला में जिसकी या